ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर पंगर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमूसु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोग पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम से स्कंध 4 अध्याय 25 श्लोक 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आसीत् पुरंजनः नाम राजा राजन् बृहत् श्रवः तस्य अविज्ञात नाम आसीत् सखा अविज्ञात चेष्टितः। आसीत् पुरंजनो नाम राजन् राजा राजन् बृहच्छ्रवः तस्याविज्ञातनामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवः तस्याभिज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवः तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः आसीत था पुरंजन पुरंजन नाम नामक राजा राजा राजन हे राजा बृहत्श्रवा यशस्वी जिसके कार्य महान थे तस्य उसका अभिज्ञात अभिज्ञात ज्ञात न होना नामा नामक आसित था सखा मित्र अभिज्ञात अज्ञात चेष्टित जिसके कर्म अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद हे राजन प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात अज्ञात था। अभिज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तात्पर्य प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पुरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस रूप के भीतर तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। यह कर्मकांड विधि है। जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है, वह भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने में लगाता है। बृहत श्रवा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रव शब्द का अर्थ है जस। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा। जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत हैं, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है जैसे हिरण्यकश्यपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सभी कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहच्छ्रवा कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र के रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अभिज्ञात सखा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र हैं। अभिज्ञात चेष्टित शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है, तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। भगवद गीता में कहा गया है, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योष्योस्य एवच नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातन। यह व्यष्टि आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह नित्य सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील अचर तथा सनातन शाश्वत है। जीवात्मा सनातन शाश्वत है, क्योंकि इसे न तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिंगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना गया है। यद्यपि यह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता 15:15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और जीवात्मा जिस दशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करता है। जीवात्मा को यह पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्म में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सात आठ दिन के गैप के बाद फिर से अपने जो नियमित भागवत का श्लोक है उस पर आ रहे हैं। आप को स्मरण होगा कि प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद चल रहा है। नारद जी प्राचीन बरही को उपदेश दे रहा है। प्राचीन बरही के विषय में आप पहले ही सुन चुके हैं कि कर्मकांड में उनकी बहुत रुचि थी, यज्ञ बहुत किए थे, इतना यज्ञ किए थे कि आस्त्रिता वसुधा स्थलम एक कुश की चट्टाई से पूरी पृथ्वी ढक चुकी थी। लेकिन नारद जी उनका उद्धार करना चाहते थे, जाकर के प्रश्न कर दिए, ये जो कार्य कर रहे हो तो क्या इससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? लक्ष्य क्या है कि दुख दूर करना और सुख को प्राप्त करना, क्या इसको आप प्राप्त कर सकते हो? और राजा को वे समझाना चाहते थे, लेकिन नारद जी तो बहुत दक्ष प्रीचर हैं, वे सब जगह एक जैसा ही प्रचार नहीं करते हैं। कोई भी प्रीचर है तो वह स्थिति को समझ करके अपने प्रचार के अपने प्रीचिंग के प्रारूप को अपने प्रीचिंग का प्रारूप देता है। नारद जी को इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रीचर हैं, घूम घूम करके प्रचार करते हैं, किसी किसी को दो चार वाक्य बोल करके ही कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। जैसे दक्ष के पुत्रों को केवल 10 बात बोले और वो लोग लग गए, तपस्या में चले गए, और उनके जो भाई थे 1000 उनको तो बस एक वाक्य कहे। अरे भाई का कर्तव्य होता है कि अपने बड़े भाई का अनुसरण करे, डायरेक्ट किए। लेकिन वे लोग बच्चे थे और उनका चित्त खाली था, बस एक वाक्य लिख दिए वही काम कर गया। लेकिन ये तो कर्म कांड में उलझे हुए हैं और शायद वे समझ रहे थे कि डायरेक्ट उपदेश करना उतना प्रभावशाली नहीं होगा, पर इसलिए वे प्रतिश्रुति दिए कि मैं एक इतिहास सुनाऊंगा, जैसा कि पिछले श्लोक में आप सुने कि कथिष्य मैं एक इतिहास कहूंगा, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। अब इस क्रम में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि क्यों नारद जी डायरेक्ट उपदेश कर रहे हैं, उपदेश नहीं कर रहे हैं, क्यों वे इतिहास के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं? और इसका कारण दिया गया है कि कोई कोई चीज है कि थोड़ा छिपा करके रखने से वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्षमा कीजिएगा, इस बात को समझने के लिए मैं एक लोक में प्रचलित क्या उसको मैंने दोहा जैसा कुछ है उसको बोल रहा हूं। कुछ लोग का मानना है कि ढांके से सोहे नहीं, किसी चीज को पूरा पूरा ढक दीजिए तो अच्छा नहीं लगता है, और देत उघाड़ कुबेस और उसको पूरा ओपन कर दीजिए वो भी अच्छा नहीं लगता है। आधा ढांके सोहत है कभी अक्षर कुछ केस, और कोई कोई चीज है कि आधा ढांक करके रखते हैं तो अच्छा लगता है। उदाहरण दे रहे हैं कवि अक्षर, कोई कविता है तो साहित्य की गरिमा यही है कि थोड़ा उसमें रहस्य हो, थोड़ा सा ढका रहता है तो अच्छा है। कवि अक्षर कुछ केस, और कुछ स्त्रियों के स्तन को कह रहे हैं कि ये पूरा ढकने से उतना शोभित नहीं होता है, पूरा ओपन कर दीजिए फिर भी शोभित नहीं है, और केस बाल तो कोई कोई चीज है ढकने से ही अच्छा लगता है। खास करके जो कविता है वो ढकने से प्रभावशाली होता है। अच्छा, इसी प्रसंग के बाद में दिया गया है, कई एक ग्राउंड दिया गया है, उसमें नारद जी कह रहे हैं, दूसरे जगह भी बात आई है कि भगवान भी परोक्ष प्रिय हैं। कोई बात परोक्ष से बोला जाता है वो भगवान को भी बहुत प्रिय है। एकादश स्कंध में ये बात आई है, यहाँ नारद जी भी यह अपना ग्राउंड दिए हैं कि भगवान को यह प्रिय है, इसी से थोड़ा छिपा करके उपदेश कर रहे हैं। और नारद जी जब इस राजा की कथा कहे तो प्राचीन बर ही समझ गए, अनुमान कर लिए कि तो हमसे रेलिवेंट हमारी कथा है, और वे कहने लगे कि हम समझ नहीं पाए, आप जो इतनी इतनी बात कहे तो मैं सबको समझ नहीं पाया। तब नारद जी एक एक चीज को समझाए हैं। और भी जगह इस तरह की बात है, और जजाति महाराज भी एक गाथा गाने लगे, अपने पत्नी से ही कहने लगे कि मैं एक बकरे का इतिहास कह रहा हूं। वो इतिहास तो अपना ही था, तो अपना इतिहास प्रस्तुत किए, तो उसी तरह जीव की क्या दुर्दशा है, और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कथा इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं कि आसित पुरंजनो नाम राजा, पुरंजन नाम का एक राजा था, उसके विषय में कह रहे हैं कि राजन बृहच्छ्रवा, नारद जी संबोधित कर रहे हैं कि हे राजन, उसका जस बहुत बड़ा था, और तस्या अविज्ञात नामासित सखा विज्ञात चेष्टित, और उसका एक सखा था जिसका नाम है अविज्ञात, और सखा के विषय में कह रहे हैं कि अविज्ञात चेष्टित, और वो सखा कि क्या चेष्टा है क्या क्रिया है यह भी इसको पता नहीं है, या यदि संधि नहीं कर विच्छेद नहीं करेंगे या संधि पाठ नहीं लेंगे तो सखा विज्ञात चेष्टित, वो सखा था उसके क्रिया बिल्कुल विज्ञात है स्पष्ट है। तो अभी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं तो इस श्लोक में इतनी ही बात है कि एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन, उसका जस बहुत बड़ा है, और वो अकेले नहीं था, वो अन्वेषण के लिए जा रहा था, घूम रहा था, आगे सब कथा आएगी, वो एक सखा उसके साथ है, उसका नाम है अविज्ञात और उसकी क्रिया भी अविज्ञात है। यहां जो कथा सुना रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसका नाम पुरंजन है। पुरंजन का क्या अर्थ हुआ, पुरम जनयति इति पुरंजन, जो शरीर निर्माण करे उसको पुरंजन कहेंगे, जीवात्मा अपने वासना के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बहुत बहुत प्रकार के शरीर की रचना कर लेता है। इस शरीर की रचना वासना के आधार पर की जाती है, तो इसलिए एक तरह से जीवात्मा ही शरीर को रचने वाला है और इसको राजा कह रहे हैं। राजा इस अर्थ में कि इस शरीर पर, शरीर के इंद्रियों पर जीवात्मा का कंट्रोल होता है। यद्यपि एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रोल है, इसीलिए इसको राजा कह रहा है। भगवान भी गीता में इस अर्थ की अभिव्यक्ति किए हैं। 15वें अध्याय में श्लोक आता है, शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। जो शरीर, शरीरम यद वाप्नोति, जो शरीर प्राप्त करता है या जिस शरीर को छोड़ता है, गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्, वो सब शरीर को लेकर के चलता है। और उसके लिए कह रहे हैं कि ईश्वर अपने शरीर को अपने इंद्रियों के कर्षण में, इसको ढोने में यह सक्षम है, इसका अधिकार है। तो इसी से भगवान इसको ईश्वर कह रहे हैं। गीता 15वें अध्याय का श्लोक है, 7वां 8वां जो श्लोक हो, शरीरम यद वाप्नोति, जो शरीर यह प्राप्त करता है, चाप्युत क्रामति या जिसको छोड़ता है, गृहित्वे तानि संयाति, यह ईश्वर है, कंट्रोलर है अपने इंद्रियों के, अपने वास अंतःकरण के, शरीर का भी, तो सारे शरीर को लेकर के चलता है। तो इस अर्थ में यह राजा है कि शरीर पर, इंद्रियों पर इसका अधिकार है। और कह रहे हैं कि राजन बृहच्छ्रवा, और इसका जस बहुत बड़ा है। इसका क्या आशय है? जस बहुत बड़ा है, और इसको इस अर्थ में ले सकते हैं कि जीवात्मा की बहुत बड़ाई की गई है। जैसे श्रील प्रभुपाद ये कई एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं गीता का, कितनी इसकी महिमा गाई गई है, न जायते मृत्यु वा कदाचिन, कभी जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता, इसको हथियार से मारा नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता। ये आश्चर्यमय है, आश्चर्य से लोग देखते हैं, आश्चर्य से बोलते हैं। तो यह इसका जस है, या दूसरे अर्थ में बृहच्छ्रव, इसका बहुत जस है। एक शरीर में तो कार्य नहीं किया, बहुत बहुत पूर्व को नगर पर विजय प्राप्त किया है, निर्माण किया है, और एक भी नगर को छोड़ नहीं रहा है, लेकर के चल रहा है। तो इसकी बृहच्छ्रवा का एक अर्थ है कि हिस्ट्री इसकी बहुत लंबी है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो भाई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप पाएंगे क्या, इसके यह खाया, यह चबाया, यह भोगा, यही तो इसकी हिस्ट्री है। इसके हिस्ट्री पर विचार कीजिए, यही हिस्ट्री आएगी, यह भोग किया, यह भोग किया। अब जीवात्मा के हिस्ट्री के विषय में श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, मुचकुंद महाराज भगवान से ज्ञापन दे रहे हैं कि पुरा रथर हेम परिष्कृतश्चरण मतंग जैरवा नरदेव संगीत स एव काले न दुरत्तयेन ते कलेवरो बिट कृमि भस्म संगीत। इसका हिस्ट्री है, राजा इसको नाम दे दिया जाता है, और सोने से सजाए हुए हाथी पर या रथ पर चढ़ करके चलता है, मतंग जय हाथी पर चढ़ करके या रथ पर चढ़ करके चलता है। लेकिन स एव काले न दुरत्त ये नते, इसका हिस्ट्री है कि एक समय है तो इसको सब लोग राजा कहते हैं, लेकिन अब कुछ दिन के बाद ये भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, या कृमि हो जाता है, या बीट हो जाता है। तो यह इसकी हिस्ट्री है। अनेक अनेक कार्य करता है, भोग करता है अनादि काल से, और उसी में लगा हुआ है। अब इसके हिस्ट्री को और भी बढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि निर्जित दिक चक्रम भूत विग्रह बराश नष्ट सम्राज बंदित। कभी कभी तो यह स्थिति हो जाती है कि अपने प्रभाव से ही युद्ध नहीं करना पड़ता है, अपने प्रभाव से ही दूसरे राजा को पराजित कर देता है, युद्ध भी नहीं करते हैं, इसके पराक्रम को देह करके भेंट अर्पित करने लगते हैं। निर्जित दिक चक्रम भूत विग्रह, वो युद्ध नहीं करता है, लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, बरासनस्थ श्रेष्ठ आसन पर बैठा है, समराज बंदित, जो उसके बराबर के राजा थे वे उसकी वंदना करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति गृहेश मैथुन्य सुखेश जोशीताम क्रीड़ा मृग पुरुष ईश नियते, उसकी हिस्ट्री दी जा रही है कि थोड़े से सुख के लिए अपने घर में जाता है, बेडरूम में जाता है, वही पत्नी उसको खिलौना के समान लथेड़ती है, बंदर के समान नचाती है। यही इसकी हिस्ट्री है, यही जस है। और आगे वह भोग के लिए तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, लेकिन उसकी वासना शांत नहीं हुई, उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती है। मुचुकुंद महाराज कहते हैं कि चिरमिह ब्रजनार्थ तप, चिरमिह ब्रजनार्थ तप्य माननुताप अवित्र षड मित्र लब्ध शांति कथंचित। बहुत दिन तक ताप से जलते रहे चिरम, लेकिन अवित्रिष षड मित्र अब अलब्ध शांति, कितना कितना भोग भोगे लेकिन ये जो छह इंद्रियां हैं कभी तृप्त नहीं हुई, इनकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। और जब तक तृष्णा समाप्त नहीं हुई तो अलब्ध शांति, शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शरण दह समुपेतस्तत् पदाब्जम परात्मन अभयम ऋतम अशोकम पाहि माम पाहि मापन नमीस। मुचुकुंद महाराज कह रहे हैं कि किसी तरह किसी संजोग से हम आपके शरण को प्राप्त हो गए, आप शांति देने वाले, अपने ज्ञान देने वाले हैं, तो आपके चरण कमल में आ गया। आपका चरण कमल कैसा है? जो अभय को प्रदान करने वाला, सत्य है, शोक को नाश करने वाला है। और मैं बहुत दुखी हूं, हमको आप शरण दीजिए। तो जब व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाए, उनके स्थान में आ जाए, तो उसका हिस्ट्री समाप्त हो जाता है। ये बृहच्छ्रवा का यही अर्थ है कि कितना दुख पाया है, कितना अशांत रहा है, यही इसका जस है। बहुत बहुत दुख भोगा है लेकिन कथंचित किसी तरह व्यक्ति वृंदावन धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लेता है। यह सब हिस्ट्री का क्रम उसका समाप्त हो जाता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। इसी से प्रबोधानंद जी उन व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि जो वृंदावन में आ गए, भगवान के धाम में आ गए, हरि के निवास में आ गए, तो उनको तो मैं प्रणाम करता कि भाई कैसे आ गए। राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्यांश्च राम। जो व्यक्ति निष्कंटक राज्य को भी छोड़ करके, उस राज्य को जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उस राज्य को भी छोड़ करके और कामन सर्वान्नपि विहितान तिक्त तिक्तान विदंत, अपनी सुंदरी पत्नी को छोड़ दिया और जो भी भोग है उसको अब उसके कटुता को अनुभव करने लगा। हित्वा विद्याकुल धन जन्माद्य विमानम प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन अपुनर अपुनर्निर्गमस्ता नमाम, कि वह व्यक्ति अपने विद्या के अभिमान को, कुल के अभिमान को, धन के अभिमान को छोड़ करके, अपने फॉलोअरों के अभिमान को छोड़ करके वृंदावन में प्रवेश कर गया। अब वृंदावन में कैसे प्रवेश कर गया, क्या उसकी स्थिति है, तो कह रहे हैं कि अपुनर्निर्गम, जिसका यह निर्णय है कि अब वृंदावन आ गए तो अब यहां से जाना नहीं है, अब जिसका त्याग कर दिए, जिसका उल्टी कर दिए, वोमिटिंग कर दिए, तो उसको नहीं खाना है। तो ऐसे व्यक्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं। इसमें एक शब्द दे रहे हैं कि तिक्त तिक्तान विदंत। कभी कभी व्यक्ति प्रश्न करता है हम लोगों से कि हम लोग इतने दिन से भक्ति में हैं, भक्ति में हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, यह हमको पता नहीं चलता, या कैसे पता चलेगा भक्ति में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता कैसे चलेगा। वो तो भक्ति में ही मीटर फिट है, उसके लिए अलग से कुछ जांचना नहीं पड़ता है। भक्ति विरक्तिर भगवत प्रबोध भवन्ति चैतत्रिक एक काल। जब हम भक्ति करेंगे तो दो चीज अपने आप होने लगेगा, भक्ति करेंगे तो विरक्ति, और भगवत भक्ति विरक्तिर भगवत प्रबोध और भगवान की अनुभूति। विरक्ति का अर्थ है कि जब भोग से स्वतः ही वितृष्णा हो जाए, स्वतः किसी के जोर जबरदस्ती नहीं। कभी कभी हम लोग भोग से बच जाते हैं, आश्रम का नियम है स्त्री से संपर्क नहीं रखेंगे, बाहर का खा नहीं सकते हैं, तो इससे बच जाते हैं, लेकिन वास्तव में इसको वैराग्य नहीं कहा जाता है, यह विरक्ति नहीं है। किसी के शासन से भोग से बच गए, यह वैराग्य नहीं है। जब अपने से स्वतः की अरुचिता आ जाए तो इसको वैराग्य कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, तो अपने से ही भोग के प्रति विरति हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, और भगवत प्रबोध भगवान का ज्ञान होने लगता है। भक्ति करेंगे तो दो चीज स्वतः होगा, और दोनों का लक्षण दिया गया है। जब विषय से वैराग्य होगा तो फिर अब विषय भोग करने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि तिक्त तिक्तान विनंत, उसका स्मरण करने से भी तीता लगने लगता है, व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि ना यह तो बहुत तिक्त है। तो जो व्यक्ति भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, वृंदावन का वास कर रहे हैं, तो यह लेवल यदि प्राप्त कर लेते हैं कि अब जो घर गृहस्थी का सुख है, पुत्र परिवार का स्नेह है, वह अब कटु लगने लगे, तिक्त लगने लगे, तब समझिए कि हम ठीक जगह पर चल रहे हैं। और भगवान का अनुभव करते हैं तो परम सुख की प्राप्ति होती है, और भक्ति के प्रगति के कुछ लक्षण है। हृदय में भगवान के रूप गुण नाम का अनुभव करके एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है, और विषय से स्वतः ही वैराग्य होता है, वह बुरा लगने लगता है। और प्रबोधानंद जी वृंदावन वासियों की प्रशंसा कर रहे हैं, और उसमें कई एक बात कह रहे हैं, उनमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कामन सर्वानपि च विहितान तिक्त तिक्तान विन्दन्तः। जो भोग की सामग्री है, भोग की सामग्री बृहत अर्थ में, जैसे कुछ भोग की सामग्री स्थूल है, खाने का सामान है, सोने का सामान है, स्पर्श का सामान है, जैसे स्त्री है, विविध प्रकार के भोजन है, ड्रिंक है, लेकिन केवल यही बात नहीं है। कभी कभी व्यक्ति इसको तो छोड़ देता है, लेकिन स्नेह को नहीं छोड़ पाता है, पुत्र का स्नेह है, पुत्र वधू का स्नेह है, उससे भी बढ़ करके वो नाती हैं वे बहुत मधुर लगते हैं। बेटा पतोह से तो थोड़ी विरति हो जाती है, अब किस कारण से उसके तो शिकायत लोग करते रहते हैं, लेकिन नाती का इतना आस्वादन करते रहते ये भी एक भोग है। और जो वृंदावन का शरण लिए हैं और वास्तव में प्रगति पर है, तो एक लक्षण आता है कि कामन सर्वानपि च विहितान तिक्त तिक्तान विन्दन्तः। अब जो हमारे इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थ थे, संबंध थे, वह तिक्त लगने लगता है, उधर मन नहीं जाता है। तो इस लक्षण से हम अपने प्रगति को मिला सकते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने से ही जांच सकते हैं। और मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि किसी तरह हम आपके शरण में आ गए और परम शांति का अनुभव कर रहे हैं, हे नाथ हमारी आप रक्षा कीजिए। यह पद्धति है। इस श्लोक में जो बृहच्छ्रवा शब्द है तो इसका मुख्य अर्थ यही है कि बहुत बहुत भोग भोगा है, लेकिन अब जो लोग उस भोग को छोड़ करके वृंदावन में आ गए तो उनके चेतना का एक पहचान है कि यदि सही चेतना में है तो अब कटुता का अनुभव करने लगेंगे, उधर आकृष्ट नहीं होगा, बल्कि भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि उनसे पूरा पूरा मुक्ति मिल जाए। देखिए मन एक है, चित एक है, तो कहीं दूसरे जगह लगा हुआ है तो भगवान में पूरा पूरा नहीं लग सकता। कभी कभी लोग आशा करते हैं, पूछते हैं कि क्या भगवान का दर्शन हो जाएगा? क्यों नहीं दर्शन हो जाएगा? भगवान तो दर्शन देने के लिए ही आते हैं, अवतार लेते हैं, और उनके कोई प्रेमी भक्त हो तो कभी भी अवतार ग्रहण कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त हमसे पूछ रहे थे कि क्या कलयुग में भगवान का दर्शन हो सकता है? क्यों नहीं दर्शन होगा? क्या भगवान काल के अधीन है? अनन्य चेता सततम योमम स्मरत नित्य सह तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो सतत मेरा स्मरण कर रहा है तो उसके लिए मैं सुलभ हूं, कोई काल या स्थान भगवान को रोक नहीं सकता है। भगवान काल के अधीन नहीं है, स्थान के अधीन नहीं है, और भगवान तो विरह अनुभव करने लगते हैं। जो भक्त की यह स्थिति कि अनन्य चेता सततम, वो सदैव भगवान के ही चिंता में लग जाता है, उनका ही चिंतन करता है, अपने भाव के अनुरूप जुट करके नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याम सुलभ। तो भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता है, उस भक्त के विरह में भगवान व्याकुल हो जाते हैं। तो भक्त की शक्ति हो या न भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की शक्ति है कि भक्त के पास आ जाते हैं, तो भगवान वहीं अवतरित हो जाते हैं, वहीं दर्शन दे देते हैं। लेकिन शर्त है अनन्य चेता है, जब चित अनन्य हो जाएगा तब। ऐसे वृंदावन में मैं एक संत के मुख से सुना, देखो भाई भगवान का एक स्वभाव है, वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते। अभी तो अपने घर को तुम भाड़े पर दे रखे हो, काम को बसाए हो, क्रोध को बसाए हो, भगवान कहां से आ जाएंगे? ये वाक्य उनका बहुत अच्छा हमको लगा, पार्टनरशिप पसंद नहीं है भगवान को। जब सब तरह से रोक करके चित्त को भगवान में लगा देंगे, वो भगवान उसमें आ जाएंगे, और ऐसे भक्तों को वे छोड़ते नहीं हैं, हटाने पर भी नहीं हटाते हैं। कई एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन इस श्लोक में यही कहा जा रहा है। नारद जी कह रहे हैं कि एक इतिहास सुना रहे हैं एक राजा के, जिसका जस बहुत है, तो जस में भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसका जस यही है कि इतना इतना लथेड़ खाया है। यही जस है और इसके सखा है, जिसके चेष्टा को वह नहीं समझ रहा है। यह पाठ है कि विज्ञात चेष्टित, भगवान प्रेरित करते हैं। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज आती है लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। जानन अप्य मृतम, जानन अप्य मृतम हित, जानन अप्य मृतम गरलम भूंजे, ऐसे प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जानन अप्य मृतम गरलम भूंजे, मैं जान करके भी कि यह अमृत है। जानन नप्य मृतम विहाय गरलम, जान करके भी कि यह अमृत है और उसको छोड़ करके मैं विस्पान कर रहा हूं। जानन नप्य मृतम विहाय गरलम भूंजे स्वयं बंधम, और मैं यह जानता हूं कि यह बंधन है, इससे दुख हमारा बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी उसको मैं जान बुझ करके सुदृक संभवत, एकदम दृष्टि है, अंतरात्मा की आवाज आती है, लेकिन फिर भी अंधे के समान उसी बंधन को दृढ़तर करते जा रहे। तो यह तो स्वभाव हो गया, अध्यास हो गया, अब स्थिति में किया क्या जाए। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी बात तो समझ में आ रही है, इच्छा होती है कि हम भी छोड़ करके वृंदावन में चले, लेकिन कर नहीं पाता। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हमारी यह स्थिति है कि जानते हुए भी अमृत को बीस से अमृत छोड़ करके बीस का पान कर रहा हूं, और यह समझते हुए देखते हुए भी कि यह बंधन दुख देने वाला है, उसको और टाइट करते जा रहा हूं अंधे के समान। वो प्रार्थना करते हैं कि वृंदाटवी मात रेख हे वृंदावन, आप ही माता के समान हैं और स्नेहमयी विकृष्य जनता सामान्य अंके सामान्य सी, तुम तो स्नेहमयी माता के समान हो और हमें विश्वास है कि हमको सब जगह से खींच करके अपने गोद में बैठा लोगी। और कहने का आशय यह है कि जब अपना बस नहीं चलता है तो वृंदावन धाम से प्रार्थना करनी चाहिए, राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे लिए कोई कार्य कठिन है, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। जैसे बच्चा गलती करता है, गंदे में रहता है, लेकिन माँ उसको खींच करके सफाई कर देती, गोद में बैठा देती है। तो उसी प्रकार प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी, अब इस स्थिति में तुम ही मेरी माँ हो और स्नेहमयी हो, हमको खींच करके अपने गोद में बैठा लोगी। और एक बार वृंदावन के गोद में बैठ गए, ये जो स्रव है, हिस्ट्री है लंबी, अब यही स्टॉप हो जाएगा। इसकी जरूरत है, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण।